पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। बोलिए 9 दिसंबर 1970 पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। आज हर एक की दो बातें देख रहे हैं कि हर एक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हर एक की कितनी पावरफुल है यह देख रहे हैं। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर है। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज को कैच करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? वो लोग आवाज को कैच करते हैं और हम कौन से संकल्प को कैच करते हैं? हम किसको कैच करने की कोशिश करते हैं?
बाप के संकल्प।
बाप के संकल्प को, जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप क्या कैच करते हो?
वाइब्रेशन।
वाइब्रेशन बाप के संकल्प और आदि अनादि संस्कार। अपने 5,000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच कर सकते हो? कैचिंग पावर इतनी आई है, वह तो दूसरों की साउंड को कैच कर सकते। आप अपने असली संस्कारों को कैच नहीं कर सकते, लेकिन केवल कैच नहीं करते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने आदि स्वरूपों और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन और कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहता है, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यही दृढ़ संकल्प रहे कि यह मैं ही तो था। 5,000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बना कर जाना। भट्टी में आए हो ना, सदैव अपना आदि स्वरूप और आदि संस्कार सामने दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। फिर यह कुमार ग्रुप क्या बन जाएंगे? पावरफुल। अनुकुमार अर्थात अनोखे। हर एक के दो नयनों से दो स्वरूपों का साक्षात्कार होगा। कौन से दो स्वरूप? सुनाया था ना, निराकारी और दिव्य गुणधारी, फरिश्ता स्वरूप और दैवी रूप। हर एक ऐसे अनुभव करेंगे। वह हर एक से ऐसा अनुभव होगा जैसे कि चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा। जब 5,000 वर्ष की बात को कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, तो इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता है? अभी जो कुछ कमी रह गई है वह भरकर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे। तो पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। किसको कैच करना है? अपने अनादि संस्कारों को। आज हर एक की दो बातें बाबा देख रहे हैं, हर एक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हर एक की कितनी पावरफुल है यह देख रहे हैं। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे आजकल साइंस वाले किसको कैच करते हैं? साउंड को कैच करते हैं, आवाज को कैच करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते, वैसे आप क्या कैच करते हो? अपने 5,000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच कर सकते हो, कैचिंग पावर इतनी आई है वह तो दूसरे की साउंड को कैच कर सकते हैं। आप अपने ही असली संस्कार सिर्फ कैच नहीं करते हो परंतु स्वरूप में लाते हो। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे उतना उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात क्या बनाओ, इतना स्पष्ट और श्रेष्ठ बनाओ जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने अनादि संस्कारों का और स्वरूपों का ही इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहता है, ऐसे ही अपनी असली चलन सहज और स्पष्ट स्मृति में रहे। सदैव यह दृढ़ संकल्प रहे कि मैं ही तो हूं, मैं ही तो था। 5,000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए, जैसे कि कौन सी बात है,
कल
कल की बात है। इसको कहते हैं कैचिंग पावर। तो अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाकर जाना। भट्टी में आए हो ना, कल की मुरली में भी था ना कुछ, कितने दिन की भट्टी है ये? 7 दिन की भट्टी। भट्टी अर्थात अंग्रेजी में फर्नेस कहा जाता है उसे, ओवन, बॉयलर। बॉयलर का टेम्परेचर कितना होता है निकलेश भाई? बहुत ज्यादा होता है, 100 से तो बहुत। तो उसमें क्या होता है, ये आग, उसमें आग होती है। सोचो कि वो 7 दिन अगर कोई वस्तु को उसमें रख दिया जाए तो जब बाहर निकलेगी तो रूप परिवर्तन होकर निकलेगी। तो यहाँ बाबा कह रहे भट्टी में आए हो। सदैव अपना आदि स्वरूप और अनादि संस्कार सामने दिखाई दे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने से क्या हो जाएगा, वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल बन जाएगी। कितना पावरफुल वाक्य है ये, स्मृति को पावरफुल बना दो तो क्या हो जाएगा, वृत्ति और दृष्टि स्वतः ही पावरफुल हो जाएगी। फिर ये कुमार ग्रुप अनुकुमार अर्थात अनोखे। तो बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। किसको कैच करना है, अपने अनादि संस्कारों को कैच करने की बात चल रही है। हमारे अनादि संस्कार अर्थात देवताओं का स्वरूप कैसे कैच करे। देवता यहाँ थे, अब यहाँ है, बीच में 5,000 वर्ष है। इन 5,000 वर्षों के पुरानी बातें कैसे कैच करे। कल सारे दिन भर क्या क्या हुआ आपको याद है, सुबह से रात तक? कल नहीं, 5 साल पहले 2010 1 जनवरी सुबह से लेके रात तक क्या क्या किया याद है? क्या वो दिन नहीं था? दिन तो था। क्या हम नहीं थे? हम भी थे, हम भी थे और दिन भी था, परंतु स्मृतियां कहाँ है?
सूर्य मुरली पड़ी थी हमने
यहाँ पर। कौन सी?
जो 31 जनवरी 31 दिसंबर को चलेगी।
दो जनवरी की बताओ, 5 जनवरी की बताओ,
पॉइंट बोल रहे, बोले पॉइंट बताओ,
पॉइंट बताओ। प्रकृति ने ऐसे कुछ नियम बनाए हैं कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म की ओर, सारी पूर्व जन्म की स्मृतियां नष्ट हो जाती है। एक व्यक्ति अगर 60 साल का हो जाता है, अरबों खरबों स्मृतियां है परंतु इमर्ज कुछ भी नहीं है। हमारी जो स्मृति है ऐसा नहीं कि वो नहीं है, स्मृतियां कभी भी नष्ट नहीं होती है, परंतु जैसे कोई स्टोर हाउस होता है, कबाड़ खाना, उसमें सारा कुछ भर दिया जाता है, उसी तरह स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस, अवचेतन का भी जो घर है उसमें ये सारी स्मृतियां है, परंतु हमें याद नहीं आती है। याद आ सकती है, उसकी भी विधि है याद आने की, दो विधियां हैं। परंतु प्रकृति ने व्यवस्था ऐसे कर रखी है जैसे आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में स्थापित होती है, पुराना सब कुछ समाप्त हो जाता है, याद नहीं रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, उसी आत्मा में सब कुछ है। बाबा ने हमेशा मूल्यों में कहा, ये कितनी वंडरफुल बात है कि छोटी सी आत्मा परंतु 84 का पार्ट उसमें समाया हुआ है, परंतु याद तो कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ बाबा कह रहे स्मृति को स्पष्ट बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, कैचिंग पावर, ताकि आप अपने अनादि संस्कारों को कैच कर सको। अनादि संस्कार और हमारे बीच में न मालूम कितने सारे जन्म हैं, ये सारे जन्मों की स्मृतियां है, विकारों की स्मृतियां है, भोग की स्मृतियां है, वो निर्विकारिता की स्मृतियां कैसे याद आ जाएगी तुरंत। संसार में जाति स्मरण कहा जाता है, जाति स्मरण एक है और दूसरा है सम्मोहन। सम्मोहन अर्थात हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस। हिप्नोसिस एक मेथड है, दूसरी मेथड है जाति स्मरण, या उसको कहे मेडिटेशन हमारी योग की भाषा में। ये दो विधियों से पूर्व जन्म में जो कुछ हुआ है वो याद आ सकता है, परंतु दोनों में एक मूलभूत फर्क है। जैसे सम्मोहन यदि किसी को किया जाए और उसको पूछा जाए कि 1 जनवरी 2005 क्या कर रहे थे, तो वो सुबह से लेकर रात तक जो कुछ उसने किया वो सब कुछ बताएगा। चेतना के पट खुलते जाएंगे, पीछे पीछे उसको लौटाया जाएगा और वो बता सकता है उसने क्या किया था सुबह से लेकर तो रात तक, कौन से कपड़े पहने थे, क्या नाश्ता किया था, क्या भोजन खाया था, किससे बात किया था, कौन से कर्म किए थे, कौन सी किताब पढ़ी थी, क्या कुछ किया था, वो सब वो बता सकता है। परंतु सम्मोहन से बाहर निकलने के बाद उसको फिर पूछा जाए कि आप बताओ क्या किया था, वो नहीं बता सकता। सम्मोहन मूर्छा की अवस्था में किया जाता है। जब सम्मोहित किया जाता है व्यक्ति को, हिप्नोसिस या मेस्मराइजेशन कहा जाता है उसको, जो मेस्मराइज होता है तब वो सब बताना चालू करता है, परंतु बाद में नहीं बता सकता। हाँ, यदि वो बता रहा है, हम ये कैसे माने कि वो जो बता रहा है वो सत्य है, वो जो कुछ बता रहा है अगर हम उसको नोट करते जाए, ठीक है, और रख दो, फिर 3 मास के बाद उसको फिर से पूछो, 3 मास के बीच में पूछा तो वो कहता है मुझे कुछ याद नहीं, 3 मास के बाद अगर उसको, कुछ मास के बाद उसको फिर सम्मोहन करो, फिर वो वही सारी बातें बताएगा जो आपने लिखी थी और उससे भी ज्यादा भी, जो आप लिख भी नहीं पाए थे। तो सम्मोहन जो है, हिप्नोसिस जो है, मेस्मराइजेशन जो है, वो उसमें व्यक्ति एज इज मूर्छा में होता है। वही क्रिया जब संपूर्ण होश में की जाए तो वो जाति स्मरण कहते हैं, जैन धर्म जिसे, जिसे हम अपनी भाषा में योग, हमारी भाषा में 5 स्वरूपों का अभ्यास, रूहानी ड्रिल का अभ्यास या योग का प्रयोग, जिसमें हम सोचते हैं कि मैं संपूर्ण निर्विकारी देवता हूं। ज्ञान हमारे पास न था, भगवान ने आकर ज्ञान दिया, इट इज अ डिवाइन रिवेलेशन, और वो कह रहा है कि तुम थे, हम कल्पना मात्र कर रहे हैं और उसमें स्थित हो रहे हैं, तो पुरानी स्मृतियां जागृत हो रही है उसमें और उसमें, ये अंतर है। ये तो हमने बहुत पुरानी बात की, 5000 साल पहले की, वैसे ही उसी संपूर्ण होश की अवस्था में भी सब कुछ याद किया जा सकता है। 2000 में एक तारीख को जनवरी मास क्या किया था वो भी हम याद कर सकते हैं। जैसे एक अंधेरा कमरा है, अंधेरा छाया हुआ है उस कमरे में। अगर हम उस कमरे में जाते और दिए को रख देते तो सारा ही प्रकाशित हो जाता है, परंतु सब इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा। परंतु यदि हम टॉर्च लेकर जाते हैं, फ्लैश लाइट, टॉर्च लेकर जाते हैं, हम राइट की तरफ मोड़ेंगे टॉर्च को, तो राइट में जो कुछ है वो सब कुछ दिखेगा, परंतु हमारे पीछे क्या है, आजू में क्या है, बाएं क्या है, वो कुछ नहीं दिखेगा। केवल जहां उसको फोकस किया गया है वो संपूर्ण दिखेगा। फोकस हटाया और दूसरी तरफ फोकस किया, वो अब अंधकार और इधर हो जाएगा फोकस। उसी तरह स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड में सारी की सारी स्मृतियां है। हम फोकस डालेंगे मेडिटेशन से, योग से और ध्यान से। जहां फोकस डालेंगे वो प्रकाशित होगा। अगर हम ये फोकस डाले कि मैंने तो बहुत पाप किए हैं, जरा सोचता हूँ कौन कौन से पाप किए हैं, तो सारे पाप धीरे धीरे जितना मन एकाग्र हो जाएगा ऐसे ऐसे पाप दिखेंगे कि फिर भयभीत हो जाएंगे। और क्योंकि ये होश में किया जा रहा है तो वो सम्मोहन नहीं है, सम्मोहन में तो व्यक्ति भूल जाता है, ये बाद में भी याद आएगा। खतरा भी है इसमें प्रभाकर भाई, क्योंकि फोकस कर दिया है, अभी पूर्ण एकाग्र हो गया है चित्त, वो सब कुछ इतना स्पष्ट दिख रहा है अब, और वो योग में भी दिख रहा है तो उसके बाद भी दिखते रहेगा। ऐसे ही अगर टॉर्च, ये 5,000 साल का एक इतना ही रखा हुआ है, यहां डाला यहां डाला यहां डाला, अब सीधा डाल दिया ऊपर, तो देवता स्वरूप में सुबह से लेकर एक वन 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 में क्या किया था वो सारी ही दिनचर्या स्पष्ट दिखेगी। एक मुरली चली थी, आने वाली दुनिया कैसी होगी। अगर हम वो याद करें सुबह से लेकर तो रात तक की दिनचर्या, योग में भर, ताजपोशी का दिन योग में बैठ के अगर याद किया जाए उसे, सम्मोहन करके नहीं। कोई हमें सम्मोहन करे कि तुम देवता थे, हाँ मैं देवता था, फिर मैं उठा, फिर पंछियों की आवाज ने मुझे उठाया, फिर वो दिनचर्या, वो सम्मोहन से बाहर आने के बाद सब भूल जाएगा। परंतु हम होश पूर्वक उस चीज को कर रहे हैं, जाति स्मरण मेडिटेशन, फोकस कर दिया टॉर्च को पूरा उधर, तो दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई देगा आरती बहन, सुबह से लेकर रात तक? चलो उस मुरली की तरफ, याद है ना कमलेश भाई, आने वाली दुनिया कैसी होगी, हिस्ट्री हॉल में रिवाइज कराई थी।
2 दिन 2 मुरलियां,
एक मेन मुरली जो चली थी बीच में, अभी अभी कुछ मास पहले
4 फरवरी
मई को चली थी,
4 फरवरी
आने वाली दुनिया कैसी होगी। और ये जो याद करना है, एक है बहुत, जैसे जो प्रेमी होते हैं ना, दो प्रेमी, वो कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन करते किधर एक दूसरे को याद करने की, ना ही योग करते हैं, ना ही कुछ लिखते हैं, अभी ये लिखता हूँ फिर पढ़ता हूँ तो याद आएगा, या कहीं रहा एकांत में जाके बैठता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करते वो, खो जाते हैं, उसका कोई टाइम नहीं है उनका। तो हमारा योग का केवल वो टाइम ना हो, बाबा के कमरे में एंट्री योग चालू, बाबा के कमरे से बाहर योग समाप्त, लाल लाइट चालू योग चालू, लाल लाइट खत्म भागो, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए, भोजन ठंडा ना हो जाए, ये सब नहीं रहता है उनमें। वो जो प्रेमी होते हैं वो खोए हुए रहते हैं। तो हमें भी हमारा मन ये सब चीजें उस समय याद करनी है। जाति स्मरण कब होगा? जब हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अभी सोने के लिए जा रहे हैं, बस सोने वाले हैं, उस समय हल्का करके अपने चित्त को भटकने दो यहां पर, कि मैं वो था। और वो देखना, पिक्चराइजेशन विजुअलाइजेशन, वो इतना इमोशनल, डीप इमोशनल लव, डीप इमोशनल अटैचमेंट, जैसे वो व्यक्तियों के प्रति है, पति का पत्नी के प्रति है, पत्नी का पति के प्रति है, माँ का बेटे के प्रति है, जो उसको निरंतर ही याद रहता है, कोई टाइम नहीं है उसका। उसी तरह जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का जो बैरियर है प्री कॉन्शियस, वो जब बहुत हल्का हो, सोने का जो समय है उस समय याद करना। याद करते 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 नींद आ जाए, तो जो संकल्प करते करते नींद आ गई, वो संकल्प सीधा सबकॉन्शियस में चला गया। योग करना ये सारा मेथड इसलिए है कि वो सबकॉन्शियस तक पहुंचे। मैं महान आत्मा हूं, संकल्प किया और सबकॉन्शियस उसको जोर से किक मार के बाहर फेंक देता है। योग में बैठो तो स्वीकार नहीं करता बहुत सारी चीजों को। इस ज्ञान को स्वीकार कराना है स्वयं को। वो एकांत में होगा, इमोशंस उसमें अटैच हो जाए, भावनाएं उसमें अटैच हो जाए। जैसे मीरा का दिखाया है, कितनी खोई है वो। उसने कोई क्लासेस ज्वाइन किए कृष्ण को याद करने के? रोज उसको किसी ने सिखाया अपने को मीरा समझ, कृष्ण को याद कर, देह सहित देह के संबंध को छोड़। उसको किसने सिखाया इस तरह से गीत लिखे जाते हैं? उसको कहां से? उसने स्वत ही लिखा। चित्त में जो भाव उमड़ रहे उसकी सहज अभिव्यक्ति है उसके, उसने जो कुछ लिखा वैसे ही। ये सारा ज्ञान उस समय याद करने का प्रयत्न करना जिस समय हम सो रहे हैं। योग करने का सबसे बेस्ट पीरियड जब बेड पर लेटे हुए हैं, अभी नींद आने ही वाली है, तब योग करते करते सो जाना। जो कुछ सोचोगे, जो कुछ संकल्प करोगे, देखना स्वयं को उस स्वरूप में, ये मेरा अनादि स्वरूप है, ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है। कैसा है? संपूर्ण निर्विकारी है। भोजन कैसा है? सात्विक आहार है, प्राकृतिक आहार है, आज बोला है बाबा ने प्रश्नोत्तर में। वस्त्र कैसे है? क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, दिनचर्या कैसी है, सुबह कौन उठाता है? पंछियों के सांस उठा रहे हैं। स्नान कहां करता हूं? पानी कैसा है? उस मुरली में सब कुछ था, सुगंधित पानी है। वस्त्र कैसे है? खराब नहीं होते है कभी। पंछियों की आवाज, पंछी कैसे है? रंग बिरंगी, उनमें भी आभूषण है, वृक्ष में भी आभूषण है। फल कैसे है? फलों में भी आभूषण लगे हुए हैं, फल भी अलग अलग प्रकार के, रसयुक्त रसदार, जैसा टेस्ट चाहिए वैसा, 56 प्रकार के भोग। स्वभाव कैसा है? संस्कार कैसा है? स्थिति कैसी है? आत्माभिमानी स्थिति है, अकाले मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई वकील नहीं, कोई पुलिस नहीं। जीवन कैसा होगा? केवल एक खंड होगा, भारत प्राचीन खंड है। आज के प्रश्न के उत्तर की अंतिम लाइन, भारत प्राचीन खंड है, एंशियंट लैंड, केवल भारत ही होगा। पुष्पक विमान कितने लाइन लगी हुई है, एक ही के पास अलग अलग पुष्पक विमान, एक फैमिली, एक इंडिविजुअल। कहीं अकेले जाने की इच्छा हो तो अकेले जा सकते हैं, एकांत में पिकनिक करने जा सकते हो, एक फैमिली वाला, उसमें भी अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग रंग के, दो ही बटन, एक बटन उड़ने का, एक बटन नीचे आने का। पहाड़ियां अलग अलग साइज एंड शेप, उसमें भी कोई पहाड़ी पक्षी के आकार की, अलग अलग पहाड़ियां। वो पानी, वो झील, वो वस्त्र, एक ही वस्त्र एक बार पहनेंगे लक्ष्मी नारायण, दोबारा नहीं पहनेंगे। दिनचर्या को याद करना, कब याद करोगे? सुबह में करना है, एक टाइम तो सुबह में खुलता है वो बैरियर, और रात में खुलता है। तो रात में अपने ही स्वरूप को देखना, आत्म अभिमानी स्थिति, 8 जन्म, 12 जन्म, 2500 साल, 1250 वर्ष, फिर 1250 वर्ष, संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति, अनासक्त वृत्ति, संपूर्ण पावन, संपूर्ण पवित्र, दृष्टि वृत्ति, ये सारी ही दिनचर्या वहां की, म्यूजिक सिस्टम कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, सब कुछ याद करना, सहज याद करना, सहज और उस स्वरूप में स्थित होना। बाबा कह रहे हैं अपने स्मृति को स्पष्ट करो, अपने स्मृति को पावरफुल करो, अपने अनादि संस्कारों को कैच करो। कैचिंग पावर पुरुषार्थ का मेन मुख्य आधार है, कैच करना। ये कार्य केवल योग में बैठ कर ही नहीं, चलते फिरते अगर किया जाए तो योग में जो होगा वो बहुत पावरफुल होगा। जहां चलता फिरता ही योग है, वहां पर वो जो बैठा हुआ योग है, बैठे और उड़े, बैठे और देह से न्यारे, क्योंकि वो स्मृतियां आ जाएगी। एक बार स्मृतियां आ गई तो आत्मा उड़ जाती है, सारा फोकस वहां हो जाता है। फिर ये सारी जो स्मृतियां है द्वापर से अब तक की, विकार भोग अपवित्रता की, स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। ये सारी जो स्मृतियां है, जैसे नष्ट तो नहीं होती है, दब जाता है, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। ये जो सारी बीच की स्मृतियां है, वो स्मृतियां अगर जागृत होगी, सारा फोकस उधर है, और जितना समय वहां फोकस होगा उतना उस स्वरूप में स्थित होंगे। जितना समय वहां फोकस होगा, वहां से फोकस हटकर इधर फोकस आ जाता है तो फिर दुख है, माया है, या फिर जाति स्मरण या मेडिटेशन और या योग के प्रयोग या हिप्नोसिस ट्रीटमेंट के तौर पर भी की जाती है मेडिकल में, देखने के लिए क्या हिसाब किताब है इस आत्मा के साथ, क्यों ऐसा हो रहा है उससे, ये देखने के लिए। या फिर कोई अगर संसार में जो धार्मिक लोग है वो इस रीति से करते हैं कि एक पुरुष एक स्त्री एक पुरुष प्रेम करते हैं, अगर उस पुरुष को हिप्नोसिस किया जाए तो उसको दिखेगा इसके पहले जन्म में भी ऐसा ही किया था, फिर शादी हुई थी और बहुत दुखों की बौछार चालू हो गई थी, अभी करने से पहले रुक जाएगा इधर क्योंकि अनुभव साथ में है, इस जन्म का तो है नहीं, तो वो पूर्व जन्म का अनुभव, उसके पहले भी ऐसा ही किया था। कोई राजा है जो सोचता है कि सारी दुनिया मेरी हो जाए, एक राज्य पर अभी आक्रमण ही करता हूं, इसके पहले कि उसको स्मृति दिलाई जाए कि पिछले जन्म में भी ऐसा ही सोचा था, पिछले जन्म में भी आक्रमण करने की सोचे, आक्रमण किया, राज्य मिला और उसके बाद में दुर्भाग्य आ गया, शायद रुक जाए। ये भी स्मृतियां जो है, बाबा ने तो एक शब्द में कह दिया, ये सारी स्मृतियां जो है वो तुम्हारी है नहीं, ये रावण के संस्कार है, तुम रावण के संस्कारों के वश होकर तुमने ये विकर्म किए, तुम्हारा अनादि आदि संस्कार ये नहीं, ये विस्मृति था, ये आधे कल्प की नींद थी, आधे कल्प है, आधा कल्प है रात, रात में किए हुए विकर्म है, अभी प्रकाश हुआ है, प्रकाश अर्थात ज्ञान। तो स्मृति को और शक्तिशाली बनाना, एक तो यह स्मृति अनादि स्वरूप की, आदि स्वरूप की, और दूसरी है फिर अनादि स्वरूप की। वो स्मृतियां शक्तिशाली तब होगी जब लंबा समय लाइट फोकस वहां होगा, वो फोकस जो हो लंबा समय हो, थोड़े समय के लिए नहीं, लंबा लंबा समय फोकस रहे। इसके लिए केवल वहां बैठकर नहीं करना है ये स्वरूप की स्मृति, चलते फिरते उठते बैठते। और दूसरा जो अभ्यास है वो परम धाम में लंबा समय रहने का अभ्यास, क्योंकि परम धाम में जब आत्मा होती है सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाता है इधर का, तो वह सोचना मैं मुक्त हूं, बंधन मुक्त हूं, फ्री हूं, मुक्ति धाम में संपूर्ण मुक्ति का अनुभव, यहाँ के सारे कर्मों से मुक्त, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ न्यूट्रलाइज। तो आज क्या करना है, यही सारे दिन अभ्यास करना है, अपने स्वरूप को अगर मुरली हो सके तो वो फिर से पढ़ना, आने वाली दुनिया कैसी होगी, कौन सी है मुझे याद नहीं,
4 फरवरी 80
तो वो मुरली है, उसमें सतयुग के जो या फिर केवल वैसे ही जितना हमने आज तक ज्ञान सुना है, जब से ज्ञान में आए तब से अब तक, और जितना हमें सतयुग के बारे में पता है, उतना ही केवल याद करने का प्रयत्न करो। जितना पता है वो भी बहुत है, वो भी फोकस उधर जा रहा है आप ही, और जैसे याद किया स्मृति और स्वरूप में स्थित तुरंत। ठीक है, आज किसका है?